नाथ का बस प्रार्थना करता हूँ अपने मगन में विशेष प्रवचन हम सबको प्रसाद करें परम पूज्य
प्रवचन शुरू करने से पहले एक बात मुझे कहनी है वो ये कि इस पुस्तक के बारे में मैं किसी पुस्तक के बारे में कभी नहीं कहता। इस पुस्तक के बारे में सिर्फ ये कहना है कि ये हर एक के घर में होनी चाहिए। आने वाली पीढ़ी को चाबी के गुच्छे के साथ ये किताब दे के आप मरें तो शायद आप अपनी परंपरा का निर्वाह करेंगे, क्योंकि पूरी परंपरा शांति सागर जी आचार्य महाराज से ही आज सबको देखने मिल रही है। इसके पहले तो लगभग विलुप्त हो गई थी, उनका पूरा जीवन परिचय इसमें है।
धारा को डिवाइड कर देता है। हम पता नहीं कितनी धारा
धाराओं में बहना शुरू कर देता है। एक ही जीवन की धारा कितनी कितनी जगह बहना शुरू कर देती है, और पूरा 3-13 जैसे जीवन हो गया ऐसा हमारा जीवन हो जाता है। ये अपन हमेशा महसूस करते हैं सुबह से शाम तक। सोचते तो यही है कि बड़े आसानी से आज का दिन गुजारेंगे और अपने जीवन को बहुत सुखद और आनंदित बनाने की कोशिश और बहुत जीवित बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हो यह जाता है कि कोई ना कोई चीज बीच में आती है और हमारे जीवन की धारा को विभाजित कर देती है और हम बहुत मुश्किल में पड़ जाते हैं। हम अपने अखंड होने की बात सिर्फ सोच के रह जाते हैं पर जीवन पूरा खंड खंड हो जाता है। ये देखना है कि ये ऑब्स्टिकल जो आया है, ये जो मुश्किल आके खड़ी हुई है, उसकी वजह क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी वजह हम ही हो, और आप जब सोचेंगे तो वजह हम ही निकलेंगे। हम अपने ही खिलाफ खड़े हो गए हैं, इसलिए ये सारे संघर्ष हमने अपने जीवन में मुश्किलें सारी पैदा की हैं। अपने खिलाफ खड़े होना, व्यक्ति दुनिया के खिलाफ खड़ा होता है फिर भी काम चल सकता है, पर जब हम अपने ही अपने नेचर के खिलाफ अपने स्वभाव के विपरीत हम खड़े हो जाते हैं तब हम ही अपने जीवन में मुश्किलें खड़ी कर लेते हैं। किससे पूछने जाइएगा कि मेरे मुक्त होने का उपाय क्या है। जब हम ही अपने हाथ से अपने जीवन में बंधन डालते हैं तो कौन खोलेगा उनको, और किससे पूछने जाइएगा कि मेरे ये बंधन किसने डाले हैं। अपनी मुट्ठी अपने हाथ से बांध करके हम दूसरे से पूछते हैं कि खोलने का उपाय क्या है, तो खुली तो है ही, बांधने की कोशिश बंद कर दो। अपने स्वभाव से विपरीत जाने की कोशिश बंद कर दें तो हम अपने स्वभाव में हैं, वो हमारा नेचर है, वो हमारी अपनी क्वालिटी है। क्या दिन भर में हम कभी ऐसा सोचते हैं कि कितनी बातें ऐसी हैं जो हमें अपने स्वभाव से दूर ले जाती हैं, जो हमें अपने स्वभाव से विपरीत ले जाती हैं, जो हमें ही अपने खिलाफ खड़ा कर देती हैं। अगर इतना हम सोचना शुरू करते हैं, मैं अपने खिलाफ नहीं जाऊंगा, मैं अपनी मौलिकता के खिलाफ नहीं जाऊंगा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिससे कि मेरी मौलिकता, मेरा स्वभाव नष्ट होता हो, मेरी जीवंतता नष्ट होती हो और मैं यांत्रिक और कृत्रिम होता चला जाता हूं, तो ही चीजें तो रह गई। आज व्यक्ति यंत्र के चक्कर में स्वयं यांत्रिक हुआ है और प्रकृति से दूर होकर के निरंतर कृत्रिम होता चला जाता है। सारी चीजें, हंसने का भी भरोसा नहीं रहेगा कि आदमी नेचुरली हंस रहा होगा, पता नहीं क्यों हंस रहा होगा, पता नहीं क्यों रो रहा होगा। ठीक ठीक हम जैसे बच्चे हंस देते हैं कि इधर हंसी है और उधर आंसू भी है, आंख भी अभी अभी गीली है और चेहरे पर मुस्कुराहट भी है, जो भीतर डोला वैसा का वैसा बाहर प्रकट हो गया। ऐसा हमारा जीवन नहीं है, सोच सोच के हंसना पड़ता है कि कहां हंसना है, अगर यहां नहीं हंसेंगे तो जरा मुश्किल पड़ेगी, और यहां हंस देंगे तो मुश्किल पड़ेगी, तो जहां नहीं हंसना वहां पर गमगीन बने रह जाते हैं, और जहां गमगीन रहना चाहिए शायद वहां हम हंस भी पड़ते हैं। हमारी हंसी तक का, हमारे किसी भी व्यवहार का कोई भरोसा नहीं रह गया है, हमें खुद भी अपने ऊपर भरोसा नहीं है कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो हमें नेचुरल बना रहा है या कि हमें कृत्रिम करता चला जा रहा है। सब कुछ आर्टिफिशियल, इतना औपचारिक, इतना फॉर्मल। कभी देखिएगा, सुबह से शाम तक देखिएगा, और जब जब हम कृत्रिम होते हैं, जब जब हम किसी चीजों को बेवजह दोहराते चले जाते हैं, रिपीट करते चले जाते हैं, तब हम कृत्रिम होने के साथ साथ यांत्रिक होते चले जाते हैं और जीवन अपने हाथ से अपनी मुश्किल में डालते हैं। हमें शायद इन सब चीजों के करने का शौक है, हमारी अपनी चॉइस है। हम जैसे हैं मानिएगा, वो हमारी मजबूरी नहीं है, वो हमारी चॉइस है। ये आप बहुत गौर से देखेंगे तब मालूम पड़ेगा, ऐसे नहीं मालूम पड़ता, ऐसे तो मालूम पड़ता कि नहीं मजबूरी हमारी, क्या करें, आप गृहस्थी बसाई है तो हम फंस गए हैं। च्वाइस किसने की थी बसाने की। आज सुबह लोग मेरे से कह रहे थे, एक बेटा कह रहा था कि मुझे फलाना नियम दे दीजिएगा और फलाना नियम दे दीजिएगा। मैंने कहा तू मेरे पास नियम लेने के लिए तो आया, मेरे से पूछने की कौन सा ले लें, जब तुमने पाप किया था तब मेरे से पूछने नहीं आया था कि ये वाला करूं कि नहीं करूं पाप। ये किससे पूछने जाते हैं,
जब झूठ बोलने का मन होता है तब क्यों नहीं हम किसी गुरु के पास जाते कि आज मेरा मन बहुत झूठ बोलने को हो रहा है और आज मैं बोलूं कि नहीं बोलूं या कल बोलूं, आज मेरा मन एकासन करने का है इसके लिए तो मैंने गुरु को खोज लिया या तो मंदिर में जाकर कमिट करके आ रहा हूं कि आज मैं एकासन करूंगा। मंदिर में जाकर कमिट क्यों नहीं करके आते हैं कि आज मेरा झूठ बोलने का मन है कि मैं बोल दूं, आपकी आज्ञा है, चलिएगा। देव से मत पूछिएगा बोलते नहीं है, शास्त्र से मत पूछिएगा, गुरु भी मिलना बहुत मुश्किल है क्योंकि जब तक भीतर ही कोई शिष्य बनने तैयार ना हो तो कोई गुरु कहीं नहीं है। अपने गुरु अपने आप बन जाइएगा, अपने शिष्य अपने आप बनने की कोशिश कर लीजिएगा और अपने से पूछ लीजिएगा कि आज मुझे करना है कि नहीं करना है। कितना आसान कितना स्वास्थ्य है पूरा ये धर्म, लेकिन इसके बाद भी हम जितने अधिक कृत्रिम और यांत्रिक होकर पराश्रित होते चले जा रहे हैं उतने ही हम अपने जीवन में अपने हाथ से मुसीबत खड़ी करके और अपने जीवन की धारा को अस्त व्यस्त करते चले जा रहे हैं। कोई हमारे जीवन को यहां अस्त व्यस्त नहीं करता सिवाय अपनी ही कषायों के, और कोई नहीं करता है। और अपने ही खिलाफ हम खड़े हुए हैं, अपने स्वभाव के खिलाफ खड़े हुए हैं। मैं आपको एक छोटी घटना सुनाऊं कि कैसे हम इन सब चीजों को चाहते हैं और मालूम नहीं पड़ता है। मजा यह भी है कि हम सब चीजों को चाहते हैं, जब कर लेते हैं और उनके रिजल्ट आते हैं तब हम कहते हैं कि हमने तो ऐसा चाहा ही नहीं था, और अगर रिजल्ट बढ़िया बढ़िया आ जाए तो किसी से कहने भी नहीं जाते कि हमने नहीं चाहा था, फिर तो कहते हैं हमने तो ऐसे ही सोचा ही था। रिजल्ट हमारे अनुसार आ जाता है तो कभी नहीं कहने जाते हम कि हमने गलत किया है। हम अपने कर्त पर उतना ध्यान नहीं देते हैं जितना कि रिजल्ट पर हम ध्यान देते हैं। रिजल्ट अगर हमारे मनोनुकूल है तो चाहे जैसा भी कृत हमने किया हो कोई चिंता नहीं। हम लोगों के साथ ये बहुत मजेदार चीजें हैं। एक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हुए, उन्होंने एक कहानी लिखी, मैंने पढ़ी वो, और बहुत अच्छी है। एक वृद्ध व्यक्ति था, वो रास्तों से गुजरता था तो छोटे छोटे बच्चे जैसा उनका स्वभाव होता है कि अगर कोई वृद्ध हो और हिलता डुलता जा रहा है, लाठी वाठी लिए है और बच्चों को देख के अगर मुंह बनाता है तो बच्चे लोग भी मजा लेते हैं उसका। तो वो बच्चे लोग जब वो निकलता था तो उसको बोलते थे लालचिड़ी। अब लालचिड़ी की कोई मायने नहीं होता ना, कोई उसका सेंस होता है, लेकिन बस जैसे बच्चे कहते थे लालचिड़ी और वो चिड़ जाता था। वो चिड़ता था तो बच्चों को मारने दौड़ता था, डराता था उनको, तो बच्चे भागते थे, उनको बड़ा मजा आता था। एक जनाब थे जो थोड़े से पढ़े लिखे थे, समझदार थे, वो रोज देखा करते थे अपनी छत पर से कि ये बच्चे कैसा है, इतने वृद्ध हो गए बाबूजी और उनको ऐसे तंग करते हैं, क्या मतलब है लालचिड़ी कहने से, बाबा अपने रास्ते से चले जाते हैं और इन बच्चों को थोड़ा समझदार होना चाहिए, इनको संस्कारित होना चाहिए, मैं इनको संस्कारित करूंगा। और एक दिन जो है आनंद फांगन बाबा के आने से पहले और जाकर के बच्चों को इकट्ठा किया कि बच्चों सुनो तुम्हारे कैसे संस्कार हैं, देखो वो बाबा कितने प्यारे हैं और निकलते हैं तुम्हें उनको नहीं चिढ़ाना चाहिए। तो बच्चे हंसने लगे, बोले क्यों? बोले बाबा चाहते हैं कि हम उन्हें चिढ़ाएं। उन्होंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता कि बाबा चाहते हो कि तुम उन्हें चिढ़ाओ। बोले नहीं अंकल, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप देख लीजिएगा, आज हम लोग चुप रह जाएंगे, हम लोग कुछ नहीं कहेंगे। और उस दिन सचमुच सारे बच्चे अपने खेल में लगे हैं, बाबा निकले, बाबा ने दो तीन चार बार बच्चों की तरफ देखा, उनके बाजू में से भी निकले कि शायद ये कुछ कहेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, बच्चे सब शांत अपने खेल में लगे थे। तो बाबा एक छोर से दूसरे छोर तक गए और वहां जाके फिर से पीछे मुड़ करके देखा कि शायद बच्चे कुछ कहेंगे, लेकिन बच्चों ने कुछ नहीं कहा। बड़े उदास बाबा, बड़े उदास उस चौराहे पे जाके खड़े थे। इतने में ये जनाब जिनने की बच्चों को समझा दिया था पहुंचे और प्रणाम किया कि बाबा जी आपको आज तो ठीक रहा होगा, और बच्चे बिल्कुल क्या करें अब नहीं समझते, हमने समझा दिया है, आज तो शायद हमने आपको बिल्कुल परेशान नहीं किया होगा। बाबा ने बहुत हिराकत की नजर से उनको देखा, अच्छा तो ये आपका किया हुआ है, आपसे कहा किसने था, आपको हमारे और उनके बीच में दखल देने का अधिकार किसने दिया था। अगर वे मुझे चिढ़ाते हैं और मैं चिढ़ता हूं तो आपको क्या तकलीफ है, ये हमारे बीच का मामला है, बच्चे और हमारे बीच का मामला है, आपको बीच में नहीं आना चाहिए। आप बताएंगे उस कहानी के अंत में वो लिखते हैं कि शायद इसी तरह हम भी चाहते हैं कि संसार हमें छेड़े और इसके छेड़ने से हम
हम अपना रिएक्शन करें और अपने इस संसार को फिर से बढ़ाते चले जाएं। जितना अधिक हम रिएक्शन करते हैं और जितना हम एक्शन चाहते हैं दूसरे की तरफ से, वही हमारे संसार को बढ़ाने में कारण बनता है। मुझे तो इसके अलावा और कोई दूसरी चीज आज तक नहीं लगी। हम जिस दिन रिएक्शन करना छोड़ दें उस दिन हमारा संसार खत्म है। हर चीज की हम प्रतिक्रिया करते हैं और प्रतिक्रिया अंततः फिर प्रतिक्रिया में देखे चले जाती है। हम जो कुछ भी यहां कर रहे हैं हमारा एक्शन नहीं है, वो ओरिजिनली हमारा एक्शन नहीं है, वो किसी ना किसी एक्शन का रिएक्शन है। या तो हमारे बांधे गए कर्मों का रिएक्शन है या कि बाहर के किसी बाह्य निमित्त का रिएक्शन है। बस ये अगर हमारा ठीक ठीक समझ जाए कि कैसा रिएक्शन करना है, तब शायद हमारे जीवन में हम अपने खिलाफ खड़े नहीं होंगे और हमारे जीवन में कोई संघर्ष नहीं होगा। कर्म के उदय में कैसा उसके साथ व्यवहार करना यह हमारे ऊपर निर्भर है। आने वाली मुश्किलों को कैसे फेस करना, उनके साथ कैसा रिएक्शन करना, कैसा बिहेव करना, अगर ये हम थोड़ा सा सीख रहे हैं। सीखना तो व्यवहार ही है भैया, निश्चय सीखा नहीं जाता, निश्चय तो व्यवहार सद जाने के बाद भीतर प्रकट हो जाता है। निश्चय तो प्रकट होने वाली वो तो हमारी अपनी ओरिजिनलिटी है, वो तुम्हारी अपनी वास्तविकता है। हम ठीक ठीक व्यवहार में नहीं जी पाते हैं इसलिए अपने उस वास्तविकता तक नहीं पहुंच पाते हैं। हम अपने जीवन में थोड़ा सा विचार करें कि आखिर मैं हूं क्या, मेरी वास्तविकता, मेरी मौलिकता क्या है। सिर्फ व्यक्तिगत अपने संबंध में, किसी संस्कृति, किसी समाज या किसी धर्म के संदर्भ में अपने आप के बारे में विचार नहीं करना। अगर करें भी तो बहुत सोच समझ के, संस्कृति की मेरी अपनी मौलिकता क्या है, धर्म की अपनी मौलिकता क्या है, मेरे अपने समाज की मौलिकता क्या है, मेरे अपने परिवार की मौलिकता क्या है, मेरी अपनी व्यक्तिगत मौलिकता क्या है। एवरी पर्सन इज यूनिक, हर व्यक्ति अपने आप में अलहदा है, हर व्यक्ति अपने आप में मौलिक है। वो जब जब भी बाहर देख करके किसी दूसरे का चेहरा लगाता है तब तक मुश्किल पैदा होती है और कुछ नहीं। और बचपन से ये आदत डाली जाती है कि बचपन से बच्चे ये आदत सीख लेते हैं, जैसा माता पिता करते हैं वैसा भी करने की कोशिश करती है। उनकी अपनी मौलिकता, ये तो बहुत बात को जाकर के समझ पाते हैं कि मेरी भी अपनी मौलिकता है, कुछ मेरा अपना स्वभाव है, मैं मौलिकता को अपना स्वभाव मान रहा हूं। ये अगर शुरू से हमारे बचपन से अगर माने डाला होता, वो ये नहीं सिखाती कि तुम्हें अब डैडी बोलना है या कि पापा बोलना है या कि मामा बोलना है, क्या बोलना है, वो ये सिखाती कि तुम्हें मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, इस चीज का एहसास करना है। शुद्धों सी, बुद्धों सी, निरंजनों से, तुम शुद्ध हो, बुद्ध हो, निरंजन हो, ये तुम्हारी वास्तविकता है। यहां से हमें अपनी मौलिकताओं की शुरुआत करनी पड़ेगी, वहां से हमें अपनी मौलिकताओं को समझने की शुरुआत करनी पड़ेगी। और अगर देर हो गई है तो कोई बात नहीं है, हम अभी भी शुरुआत करें कि आखिर मेरी अपनी वास्तविकता क्या है, इसके लिए मेरे पास सोचने का समय है कि नहीं। हम सोचते हैं दूसरे के संदर्भ में कि मैं उसके संदर्भ में कैसा हूं, मैं अपने समाज के संदर्भ में कैसा हूं, मैं अपने धर्म के संदर्भ में कैसा हूं, मैं अपनी संस्कृति के संदर्भ में कैसा हूं। इन रेफरेंस टू अदर्स, मैं दूसरे के संबंध में कैसा हूं, मैं दूसरे के रेफरेंस में, मैं अपने संदर्भ में कैसा हूं, मैं अपने आत्मा के संदर्भ में कैसा हूं, मेरी अपनी मौलिकता क्या है। इतना थोड़ा सा मेरे अपने जीवन की कोई लय है कि नहीं, कोई रिदम है कि नहीं, और वो रिदम खो गई है। और जब रिदम खो जाती है तो वही संगीत संगीत ना होकर के नाइस हो जाता है। नाइस और म्यूजिक में इतना ही फर्क है, जीवन के संगीत और जीवन की भड़बड़ाहट में अगर ज्यादा फर्क है तो इतना ही है कि एक सिस्टम गड़बड़ा गया है। कहीं कोई रिदम थी, कहीं कोई लय थी, सांसों की भी लय थी, हुआ करती है, लेकिन वो हम नहीं सुन पाते हैं। आज वक्त ही नहीं है व्यक्ति के पास कि वो शांति से बैठकर अपनी ही आती जाती सांसों का लेखा जोखा कर सके, अपनी ही आती जाती सांसों का संगीत सुन सके। ये मंदिर, ये मूर्तियां, ये सब हमने इसलिए बनाए थे कि जिनके निकट जाकर के हम अपनी ही सांसों का संगीत सुन सकें, शांत होकर के बैठते चले जाएं, वो जो सामने है उसको मैं अपने भीतर प्रकट करते चले जाऊं। शायद इसलिए बनाया था, इतना इजी होने के लिए,
इतना सहज और इतना सरल होने के लिए ये सारी प्रक्रियाएं हमें दी थी, लेकिन इन सबको भी हमने बहुत यांत्रिक बना दिया। पूजा की प्रक्रिया भी यांत्रिक, अभिषेक का भी एक समय निश्चित, पूजा का भी एक समय निश्चित, हर चीज का एक समय निश्चित, चाहे मन बने या न बने आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि 7 बज गए हैं, घंटी बज गई है, अब आपको ठीक 7 बजे अपने को एडजस्ट कर लेना पड़ेगा। वो एक ही बार हो सकता है अभिषेक, दूसरी बार आपका मन करे तो नहीं कर सकते आप, नहा सकते हैं आप 3 दफे नहा सकते हैं, वो आपकी मर्जी, लेकिन ये मंदिर हमारा है, इस मंदिर में तो एक ही बार होगा, बड़ा मजा है। इस प्रोसीजर को भी हमने मैकेनाइज कर दिया, कंप्यूटराइज, कुछ दिन के बाद शायद कंप्यूटराइज कर देंगे कि आगे हम और बटन दबाएंगे और वो शुरू हो जाएगी, उधर कचंदन तन ढोल पुष्प कही बोलना शुरू करेगा, और हमको कुछ नहीं करना, हमको दूसरा बटन दबाना है तो वहां से अर्घ बना बना आएगा और भगवान के सामने चढ़ जाएगा। हम सिर्फ ज्ञाता दृष्टा बने हुए देखेंगे कि क्या बढ़िया ऑटोमेटिक प्रक्रिया चल रही है, पूजा की प्रक्रिया चल रही, और कोई शायद आगे आए तो शायद मंदिर में वीडियो भी आ जाए, और मंदिर में वीडियो के बाद उस पर जो माइक्रोफिल्म है वो भी आ जाए, बटन दबाया समय सार सामने, जिस भाषा में चाहिए उस भाषा में ट्रांसलेशन करना ट्रांसलेशन कर लो, हम सिर्फ सामने बैठे हैं। वही तो हम सोच रहे थे कि ज्ञाता दृष्टा होना चाहिए, वो हमारा नेचर है, तो कितना मजा आएगा, हम सिर्फ ज्ञाता दृष्टा सिर्फ बटन दबा करके करेंगे प्रक्रिया सारी, ये मैकेनाइज हो रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, हमारी अपनी भावनात्मकता इससे नष्ट हो रही है, हम निरंतर मशीन की तरह ये प्रक्रियाएं दोहराते चले जाएंगे तब भी नहीं होने वाला। हमें बहुत सहज, बहुत सरल, बहुत भावात्मक हुए बिना धर्म की शुरुआत हम कर ही नहीं सकते, और ये चीज आज खत्म होती चली जा रही। कभी आप सोचिएगा इस पर, जो भी सोचेगा मैं मानूंगा कि हाँ आपने अपने जीवन के कल्याण के लिए कुछ सोचा। दूसरा क्या कर रहा है दूसरे के संदर्भ में मत सोचिएगा, समाज कहां जा रही है समाज के संदर्भ मत सोचिएगा, धर्म हमारा क्या कहता है मत सोचिएगा, मैं तो ये कह रहा हूं, हम धर्म के नाम पर बहुत सारी चीजें धर्म की किताबों में शामिल कर चुके हैं, इसलिए कह रहा हूं ये बात, लगता है कि ये धर्म की बात है लेकिन है नहीं, है जो हमारे अंतर आत्मा में परिवर्तन न ला पाए वो क्या काम की बात, हमें शांति न दे पाए, हमें ईज न दे पाए, हमें सहजता और सरलता न दे पाए, वो कोई भी प्रोसीजर क्यों ना हो, वो प्रोसीजर पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। प्रोसीजर पर प्रश्न लगाने का मेरा मकसद ये नहीं है कि वो प्रोसीजर गलत है, मेरे करने का प्रोसीजर गलत है, मैं जिस मानसिकता से उस प्रक्रिया को करता हूं वो मानसिकता शायद ठीक नहीं है, इसलिए उस प्रोसीजर के बेनिफिट नहीं मिल रहे हैं। प्रक्रियाएं दोहराते चले जाना आसान है, लेकिन प्रक्रिया के साथ मन को भी परिवर्तित करना उतना आसान नहीं है। पूजा के तब एक थाली से दूसरी थाली में चढ़ाना जितना आसान है, उतना ही मन को उठा करके एक अपवित्रता से दूसरी अपवित्रता में रखना तो आसान है, पर अपवित्रता को उठा करके पवित्रता की तरफ समर्पित करना उतना आसान नहीं है, पर यह आसान हमें बनाना पड़ेगा, और यह आसान बनाएंगे हम अपने व्यवहार से। हमारा रोजमर्रा का जीवन जैसा हम जीते हैं उसमें हमें देखना पड़ेगा कि कितने हम कृत्रिम हुए हैं, कितने औपचारिक हुए हैं और कितने हम यांत्रिक हुए हैं, ये बार देख लीजिएगा और अपने आप प्रक्रिया बदल जाएगी। मैं आपको एक छोटी सी घटना सुनाता हूं, इतने बड़े गांधी जी के बारे में उस दिन मुझे याद